व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिम्। गंगा तट पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को भगवान की रस भीनी मधुर मधुर एवं ऐश्वर्य से भरी हुई कई प्रकार की लीला सुनाते हैं, परंतु दशम स्कंद का ये जो उत्तरार्ध भाग है इसमें भी प्रेम के अंदर ही इसका समावेश किया है। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, एक बार सब देवताओं ने विचार किया, सब ऋषि मुनियों ने विचार किया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में कौन महान है, कृषु देवेशु को महान इति। तो परीक्षा के लिए महाराज भृगु को भेजा कि आप परीक्षा लीजिए। भृगु जी महाराज सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी की सभा में गए। सभा में देखो एक तो समय पर पहुंचना चाहिए, और यदि विलंब से आए तो पीछे बैठना चाहिए, और यदि आगे आना ही हो तो बिना किसी के व्यवधान के आना चाहिए, और आवे तो सबको नमस्कार करके बैठना चाहिए। जैसे कोई अपराधी लुकते छिपते आता हो ऐसे अपने को अपराधी मान करके सभा में आगे बैठना चाहिए, अपराधी मान करके। परंतु हमारे भृगु जी तो आज परीक्षा लेने गए थे ना भगवान ब्रह्मा जी की, तो एक तो सभा में देरी से आए और बड़े अकड़ाई के साथ चलते हुए आए। ऊंचा सिर किए हुए आए और ठीक ब्रह्मा जी के सामने बैठे और ब्रह्मा जी को प्रणाम और नहीं किया, और ब्रह्मा जी की तरफ ताकते रहे, प्रणाम भी नहीं किया और देखते भी रहे। ब्रह्मा जी को लगा कि देखो कैसा मूर्ख है ये, एक उद्दंडता करे तो कोई बात नहीं, ये तो उद्दंडता पर उद्दंडता कर रहा है, देरी से आना, आगे बैठना और अभिनय करना, और फिर हमारी तरफ देखता और है। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। देखो क्रोध के अंदर है ना ये जो भोवे है ना, भोवे का बीच का भाग ये है, ये हिलने लगता है, भोवे भी ये हिलने लगता है, ये बिल्कुल वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि क्रोध का स्थान माना गया है दोनों भोवों के बीच में जो ये है। एक तो होती है ललाट के बीच की जगह, ये नहीं, इसके नीचे दोनों भोवों की जगह जो है। यहां ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी तन गई और जो ये क्रोध का स्थान है ये स्पंदित होने लग गया है। भृगु जी ने देखा कि इनको मान अपमान से क्रोध आता है। भृगु जी महाराज वापिस रवाना हो गए, न नमन किया और न आज्ञा ली, सीधे रवाना हो गए। देरी से आना, आगे बैठना और फिर पहले जाना, इन सब बातों से ब्रह्मा जी नाराज हो गए। वहां से सीधे रवाना होकर वे कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर कौन जाए भाई, किसको लेना देना। भृगु जी आए न जाने, आप देखो कैलाश पर्वत पर कभी नारद जी गए हो, कैलाश पर्वत पर कभी कोई और ऋषि मुनि गए हो, बहुत कम प्रसंग आता है, आता है बहुत कम, नगण्य। चित्रकेतु के समय जरूर थोड़ा प्रसंग आया था, एक इलाव्रत खंड के विषय में बताने लगे तब थोड़ा सा प्रसंग आया था, पर ये कादाचित प्रसंग है। कादाचित माने कभी कभी होने वाला, कदाचित होने वाला। आज ये भृगु जी महाराज गए तो शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए, कह रहे आज मेरे यहां कोई आया तो सही, आओ आओ भृगु आओ, निहाल कर दिया, आओ भृगु आओ आओ। बड़े उदारता से भगवान शंकर ने अपने हाथ फैलाए, भृगु जी से कहा आओ मिलो। भृगु जी पास में आए और फटकारते हुए कहने लगे, दूर हटो, हमसे स्पर्श मत करना, नरमुंडियों की माला पहनते हो, मुर्दे की राख लगाते हो, मुर्दे पर रखी हुई माला को खुद धारण करते हो और हमारा स्पर्श करना होगे, दूर हटो, हमारा स्पर्श मत करना। ऐसे तिरस्कार करने लगे। अब भगवान शंकर तो शंकर है, वो आशुतोष भी है और आशु क्रोध भी है, जल्दी राजी होते हैं जल्दी नाराज होते हैं। अरे लाओ ला रे त्रिशूल लाओ, ये बहुत देर हो गई इसको बोलते हुए, मैं तो इतना प्रेम से बोलता हूं, ये हमको पटकारता, लाओ त्रिशूल। त्रिशूल लेकर के वो भगने लगे। अब आगे आगे तो भृगु महाराज, पीछे पीछे शंकर जी मारने के लिए दौड़े उनको। पार्वती ने देखा कि बड़ा मुश्किल काम हो गया, जैसे तैसे पार्वती दौड़ करके भगवान शंकर के सामने खड़ी हो गई कि हे प्राणनाथ ठहरिए, आप ऐसा अपराध मत कीजिए, ब्राह्मण है आप, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हो, आपने धर्म की रक्षा में ब्राह्मण की रक्षा को सबसे पहले स्थान दिया है, और आज आपका त्रिशूल जो असुरों पर उठने वाला था वो ब्राह्मणों को मारने के लिए उठेगा, दुनिया क्या कहेगी, रुक जाइए, नहीं देवी, भृगु ने हमारा बड़ा अपमान किया, कोई बात आप इतना बड़ा जहर पीने वाले, थोड़ा अपमान का भी जहर पी लीजिए, और यदि आपने इनको मारने के लिए त्रिशूल उठाया ही है तो उस त्रिशूल को ऐसे फेंके कि वो मेरी छाती को बीनता हुआ जाए, कम से कम मेरी आंखों से मैं एक ब्राह्मण की हत्या आपके त्रिशूल से न देख सकूं, ऐसा कर दीजिए। अच्छी बात है देवी, तुम्हारा चित्त दुखा करके और मैं क्या कर लूंगा। आ गए भगवान, इधर भृगु जी भगे 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 गए, सीधे बैकुंठ में गए। बैकुंठ में भगवान विराजमान लेटे हुए, शेष शैया पर लेटे हुए भगवान, और अपना चरण है वो लक्ष्मी जी के हाथ, लक्ष्मी जी के गोद में। देखो भगवान विष्णु की मूर्ति देखिए आप, झांकी देखिए, वो यूं तो सर्प के गोद में लेटे हुए, चरण उनके लक्ष्मी जी के पास, और उनका दृष्टिकोण किधर, इधर देखते हैं, थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर, बीच की तरफ जो दृष्टि है, और वो नेत्र आधा बंद आधा खुला हुआ है। और बड़े आतुर होकर के देख रहे हो, आतुर होकर के, ऐसे भगवान की वो मूर्ति, भगवान की वो झांकी। देखो भगवान आधा नेत्र बंद रखते हैं आधा खुला रखते हैं, इसका अर्थ क्या है वो ही जाने भाई। संत महापुरुष बताते हैं भगवान दयालु है, अपने मुंह से तो क्या कहेंगे वो। भगवान कहते हैं प्यारे जीवों आओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारी कोई गलती है, तुम्हारा कोई अपराध है, तुम्हारी कोई भूल है, चूक है, पाप है, इनकी तरफ मैं देखता ही नहीं हूं। ये आधी आंख इसलिए बंद किया है और आधी आंख खुली क्या है कि भाई मैं तुम्हारा केवल वर्तमान का भाव देखना चाहता हूं। वर्तमान में तुम मेरे प्रति क्या भाव रखते हो? तुम्हारा वर्तमान का भाव देखना है, मुझे तुम्हारा भूतकाल नहीं देखना है। ऐसे आश्वस्त नेत्रों से भगवान मनुष्यों की ओर देखते हैं। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आओ आओ। जैसे माँ बच्चे को देखती है ऐसे भगवान देखते हैं, दया से डूबे हुए भगवान। देखो ये लक्ष्मी जी की गोद में भगवान चरण रखते हैं और शेष की शैया पर सोते, इसका भी कोई एक भाव है। ये भाव आपको आज नहीं कल पता चलेगा। एक अध्याय पूरा आता है भागवत में कि शेष नाग पर सोने का अर्थ क्या है, भगवान के कुंडलों का अर्थ क्या है, शंख चक्र गदा पद्म का अर्थ क्या है, वनमाला का अर्थ क्या है, कौस्तुभ मणि का अर्थ क्या है। पर अभी तो इतना ही देखिए कि आधा नेत्र बंद और आधा नेत्र खुला है। वो अपने लोगों को आश्वासन देते हैं, डरो मत प्राणियों, घबराओ मत, तुम्हारे पाप को मैं नहीं देखता, गलती होगी नहीं देखता। एक माँ तुम्हारा पक्षपात करती है, मैं भी पक्षपात कर लूंगा, तुम आओ तो सही मेरे पास। ऐसे भगवान प्रतीक्षा करते हुए वो देख रहे हैं। क्या मधुर भगवान की झांकी है। ऐसे समय में हमारे भृगु जी वहां पहुंच गए। भृगु जी ने आव देखा न ताव देखा, दयार्द्र भगवान, कृपा मूर्ति भगवान, स्नेहिल भगवान, वो तो आतुर होके देख रहे हैं। और भृगु जी महाराज ने जाकर सीधी उनके छाती पर लात मारी, कस के लात मारी, भगवान की छाती में लात मारी। भगवान तपाक से उठ गए और ब्राह्मण के चरणों को छू करके, अरे ब्राह्मण देवता आपके चरणों में कहीं लगी तो नहीं है? भगवान रो रहे हैं, उनके चरणों को धो रहे हैं। मेरी छाती तो बहुत पक्की हुई है भृगु महाराज, कभी हिरण्याक्ष से, कभी हिरण्यकश्यप से, कभी रावण से, कभी कुंभकर्ण से, कभी शिशुपाल से, कभी दंत वक्त्र से, कभी माली से, कभी सुमाली से, न जाने कितने कितने दैत्यों से पाला पड़ा। उनकी गदाएं खा खा करके मेरी छाती बहुत पक्की हो गई। उनकी गदाएं टूटती थी, मेरी छाती नहीं टूटती थी। ऐसे कठोर छाती पर आपके कोमल चरण, और वो भी आपने बड़े वेग से लगाए, आपकी जरूर चोट पहुंची होगी महाराज, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। रोने लग गए भगवान। भृगु जी पर क्या बीती होगी वो भृगु जी जान सकते हैं। भृगु जी महाराज गए, मरवो हे प्रभु, क्षमा करो नाथ, क्षमा करो। आज के बाद से मैंने तो ये विचार कर लिया, संसार में सब लोगों को यही निवेदन करना चाहता हूं, भगवान की कभी परीक्षा मत लेना। भगवान कह रहे नहीं आपके चरणों में लगे, क्यों शर्मिंदा करो महाराज मुझे। भृगु महाराज तो खुद रोने लग गए और आकर के ऋषि मुनियों के बीच में कहने लगे कि भाई कभी परीक्षा मत लेना, परीक्षा लेना बहुत खतरनाक काम है, कितना अपमान करना पड़ता है। मैंने मेरे बाप का अपमान किया, मैंने शिव का अपमान किया, और भगवान शंकर के तो मैंने लात, भगवान विष्णु के तो मैंने लात लगा दी, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तो आज के बाद से अब यही निष्कर्ष निकलता है कि संसार में सबसे बड़े क्षमाशील, सद्गुणों के निधान, करुणा वर्णालय, अनंत कृपा सागर, केवल एक भगवान विष्णु है। सब लोगों का संदेह दूर हो गया। ऐसी ऐसी भगवान की कथाएं हैं। अब देखो ये प्रसंग बीच में आ गया, कोई मतलब नहीं था ये, पर ये क्या है, पीछे प्रसंग आया ना, युधिष्ठिर का और भगवान कृष्ण का संवाद की जिस पर मैं कृपा करता हूं उसको मैं दरिद्री बनाता हूं। देखो यदि वृकासुर के ऊपर भगवान कृपा नहीं करते तो वृकासुर की कितनी भयंकर दुर्गति होती। भगवान शंकर ने प्रकट होकर जिसको वरदान दे दिया और जिसने भगवान शंकर की ऐसी आराधना की उसकी दुर्गति हो जाए, ये भगवान विष्णु देख नहीं सकते थे। तब वे बटुक बन करके आए और उसके हाथ को अपने सिर पर, उसी के ही सिर पर रखवा करके उस वृकासुर का सारा पाप भस्म कर दिया और उसका उद्धार करवा दिया। तो वो दया के अंदर डूब गए हमारे सुखदेव जी महाराज। इसलिए भगवान की ये कथा बीच में आ गई, दया में विभोर हो गए। देखो भाव में जब तक आदमी डूबता नहीं है ना, तब तक उसका रस का अनुभव नहीं होता। तो सुखदेव जी महाराज भाव में डूबे और डुबाए। अब एक कथा याद आती है, देखो जिनके पास भागवत है वो खूब अच्छी तरह से पढ़ लेना कि इस कथा के अंदर आपको केवल वो पात्र पात्र दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। इसलिए ऐसी कथा है, ये क्या है, ये कुछ व्यक्तिगत भगवान के अनुभव होते थे लोगों को, ये व्यक्तिगत अनुभव है। कैसे बता रहे हैं कि देखो द्वारिका में एक ब्राह्मण था, वो अपने मरे हुए पुत्रों को लाकर के भगवान कृष्ण के महल के सामने रखता था और अंत संत न कहने लायक बातें भगवान के लिए कह करके चला जाता था और भगवान उसकी बात को बड़े प्रेम से सुन लेते, कुछ नहीं करते। तो वो क्या बोलता, ये कृष्ण ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला है, ये षटबुद्धि है, ये विषयी है, लोभी है, एक क्षत्रियाधम है, इसके पाप के कारण से मेरे बच्चे मरते हैं, ये पापी है, ऐसे ऐसे भगवान के लिए और उनकी द्वारिका में ऐसे शब्द बोलता था। एक दिन अर्जुन बैठे हुए थे और यही शब्द वो बोल करके गया, तो उस समय तक उनके 9 लड़के हो गए थे। तो अर्जुन ने सुना तो अर्जुन को ये अच्छा नहीं लगा। अर्जुन दौड़ा दौड़ा महल से नीचे आकर कहने लगा, ए ब्राह्मण कैसे बोलते हो, तुम्हें पता नहीं है कृष्ण मेरे परम आराध्य परम मित्र है, कृष्ण को कुछ भी कहना मुझे कहना होगा। अरे जा जा हिंजड़े, तुम्हारे जैसे बहुत आए और बहुत गए, कृष्ण का पक्ष लेने वाला आया है। तो कहा कि देख ब्राह्मण, अब की बार तेरे संतान होने लगे तो हमको बोल देना, पर हम कृष्ण के लिए शब्द नहीं सुन सकते। तू कौन है तू? मैं अर्जुन हूं, गांडीव धनवा अर्जुन, याद रखना ये द्वारिका है, कृष्ण यहां कुछ नहीं कर सके, मेरे बच्चों को बचा नहीं सके, बलराम बचा नहीं सके, प्रद्युम्न बचा नहीं सके, अनिरुद्ध बचा नहीं सके, तुम क्या बचाओगे? 4 का ही नाम लिया यहां, 4 का नाम। ये चारों कौन है आपको पहले बता के आए कि 4 अंतःकरण की वृत्ति के ये अधीश्वर है, कि इन्होंने नहीं बचाया तुम क्या बचाओगे मेरे बेटे को? कहना ही मेरा नाम अर्जुन है। जब आप वीरता में बात करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम भी नहीं हूं, मैं अनिरुद्ध भी नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न भी नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं, अपने आप में मैं अर्जुन हूं। अच्छी बात है, यदि आप अर्जुन हैं तो अब हमारे जब बालक होने लगेगा तो हम आपको बोल देंगे। अर्जुन ने कहा कि देखो तुम्हारा बालक यदि कोई मृत्यु के वहां यमराज जी के वहां भी चला गया तो मैं लेके आऊंगा, और यदि तुम्हारे बालक की रक्षा नहीं कर सका तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अच्छी बात। अर्जुन भी द्वारिका में, ब्राह्मण भी द्वारिका में और ये लीला भी द्वारिका में। जब उस ब्राह्मण के वहां लड़के होने की बात आई तो उसने आकर अर्जुन से कहा, हे अर्जुन सुन लो, अब हमारे ब्राह्मणी के बालक होने वाला है। अर्जुन वहां गए और दिव्यानी अस्त्राणी संस्मृत्य, दिव्य दिव्य अस्त्रों को याद करके सब उस घर को सुरक्षित कर दिया। कोई वायु भी बाहर से प्रवेश न कर सके ऐसा उसको ढक दिया और स्वयं भी वहां पर दिव्य अस्त्र लेकर के बड़े जागरूक होकर के सन्नद्ध होकर खड़े रहे। कोई यमदूत आएगा, कोई यमराज जी आएंगे, कोई देवता आएगा, आज मैं उसको इस बाण की नोक के ऊपर रख करके ऐसी रक्षा करूंगा, इसका बच्चा नहीं मरने दूंगा। परंतु भाई भगवान को तो लीला करनी थी। उसी समय में थोड़ी देर में अंदर से समाचार आया, अरे अर्जुन ये तुमने क्या रक्षा का प्रबंध किया, ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ। मेरे जो भी पुत्र होता था मरता था तो कम से कम मरने के बाद उसको कई देर तक हम छाती से लगाकर रोते तो थे, उस मरे हुए बालक को भी चूम करके हम हमारा शोक तो दूर करते थे, लेकिन यहां तो वो लड़का जन्मा जन्म के बाद वो तो ऐसा गायब हुआ वो अदृश्य हो गया। अर्जुन ने कहा कैसे हो सकता है कि हो गया, कैसे क्या हो सकता है, वो तो हो गया। अर्जुन को बहुत बुरा लगा, ब्राह्मण फटकारने लगा कि अरे तुझे मैं क्या कहूं अर्जुन, तू तो नपुंसक है, तेरी बातों पर मैंने विश्वास किया, मूर्खता तो मैंने की है, तेरा तो काम है उल्टा पुल्टा बोलने का, तेरे शस्त्र में जान होती तो तू नपुंसक क्यों बनता उस वक्त, तुझे नपुंसक बनने की आदत है और नपुंसक व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, मैंने तुम्हारे पुरुषार्थ पर भरोसा किया और आज मेरा मरा हुआ बालक नहीं मिला, डूब मर जाओ अर्जुन। अर्जुन को इतना क्रोध आया, अर्जुन सीधे यमराज जी के वहां गए, यमराज जी से कहा, यमराज जी या तो उस ब्राह्मण के बालक को दे दो नहीं तो आपकी यमपुरी को उलट पुलट कर दूंगा। यमराज जी ने कहा, भैया क्यों क्रोध करते हो, द्वारिका के ब्राह्मण बालक को मेरे यहां लाने की किसी में क्षमता है क्या? ओहो। फिर गए इंद्रपुरी में, इंद्र से कहा, पिताजी आज मेरे जीने मरने का प्रश्न है, किसी भी कारण से यदि आपने उस ब्राह्मण के बालक को हरा है तो आप मुझे लौटा दीजिए और एक बार मैं उस ब्राह्मण के हाथ में ले जाकर बालक को दे दूं, उसके बाद की बात देखी जाएगी, मुझे वो बालक चाहिए। अरे बेटा जहां तू अग्नि में कूदने की प्रतिज्ञा करता हो वहां पर मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं कोई और बात थोड़ी करूंगा, मेरे पास नहीं है। वरुण देवता के में गए, अग्नि लोक में गए, सब जगह गए, रसातल में गए, कहीं पर भी वो ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। बड़े लज्जित होकर के वे द्वारिका में वापिस आए और उस ब्राह्मण के घर के सामने चिता बनाकर उसको प्रज्वलित करके अग्नि में प्रवेश करने ही वाले थे, इतने में भगवान ने आकर हाथ पकड़ लिया, अर्जुन क्या करते हो? देखो इसमें बिल्कुल और का नाम नहीं आया कि और भी कोई लोग थे। इस लीला को कोई देख रहा था, द्वारिकावासी देख रहे थे, ऐसा नाम नहीं आया है। कैसी ये व्यक्तिगत लीला है, व्यक्तिगत लीला, क्या पता ये अर्जुन के लिए भगवान ने दिखाई हो या उस ब्राह्मण के लिए दिखाई हो। परंतु इसमें है तो केवल भगवान, ब्राह्मण और अर्जुन तीन। अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए अर्जुन प्रतिज्ञा करने से पहले मुझसे कोई सलाह भी नहीं ली, क्या चाहिए? लगे हे नारायण, मुझे तो ये ब्राह्मण का बालक चाहिए, चलो मेरे साथ। भगवान रथ में बैठा करके अर्जुन को ले गए, पश्चिम दिशा की ओर ले गए। क्यों? देखो अब ये भगवान की लीलाएं पश्चिम दिशा में ही जा रही है, जैसे सूर्य अस्त होता है ऐसे लीलाएं भी अब अस्त हो रही है। वही सात द्वीप, सात समुद्र पार करने के बाद, लोकालोक पर्वत को पार करने के बाद, भगवान उस रथ को और आगे ले गए और आगे ले गए। भगवान के जो घोड़े थे वो जितने जमीन पर चलते थे ऐसे ही वो पानी के अंदर चलते थे, वैसे ही पानी के अंदर वो दिव्य रथ, दिव्य घोड़ा। भगवान ने सुदर्शन चक्र को पानी के अंदर जाने के लिए कहा, सुदर्शन चक्र ने रास्ता बनाया और घोड़े उस रास्ते के अनुसार चलते ही चलते पानी के अंदर खूब गहरे चले गए। वहां जाकर के रथ रुका और एक बड़ा दिव्य महल देखा। उस महल के खंभे मणियों से बनाए हुए और वहां उस महल के अंदर प्रवेश किया, फिर और अंदर प्रवेश किया। हजारों हजारों फण वाला शेषनाग, वो शेषनाग यूं गोल चक्र के अंदर घुमा हुआ और यूं छत्र किया हुआ है और उनके बीच में एक महाविभूति विराजमान है और कृष्ण और अर्जुन को देख करके वो मुस्कुरा रही है। अर्जुन ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने उस महापुरुष को देखा, अर्जुन ने भी उस महापुरुष को देखा। भगवान ने उस महापुरुष को प्रणाम किया, कृष्ण भगवान ने, अर्जुन ने भी प्रणाम किया और उसने वो हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दिया। अर्जुन देखता है सकल सूरत एक जैसी मिलती है, परंतु एक आशीर्वाद दे रहे, एक आशीर्वाद ले रहे हैं। आठ उनकी भुजा है, सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने अपने ही आप को, अपने ही आप के द्वारा पूजित किया। आत्मानम अनंतम अच्युत वंद, अपने आप को ही प्रणाम किया। और फिर वे महापुरुष शेष सैया पर सोने वाले भगवान कहने लगे, हे कृष्ण, हे अर्जुन, आप दोनों बड़ी सावधानी से मेरी बात को सुनो। आप लोगों को यहां बुलाने के लिए ही मैंने उस ब्राह्मण के सब बच्चों को बुलाया है। वो किसी काल के द्वारा मरने वाले नहीं थे, वो मेरी ही इच्छा शक्ति से यहां आए हुए हैं। आप दोनों को ये संदेश देना है, आप दोनों का यहां अवतार लेने का समय पूरा हो गया है। हे नारायण के अवतार में आए हुए कृष्ण और हे नर के रूप में आए हुए अर्जुन, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि पृथ्वी का भार अब हल्का हो गया है। अब आप लोगों को अपने अपने स्थान पर, अपने अपने धाम में चले जाना चाहिए। ये ब्राह्मण बालक ले जाओ और उस ब्राह्मण को संतुष्ट कर दो। भगवान ने कहा, सुना अर्जुन, ब्राह्मण बालकों को लेकर आए और ला करके भगवान ने वो सब जो है ब्राह्मण बालक ब्राह्मण को दे दिए। अब देखो इस लीला में कहीं द्वारिका में भी चर्चा की बात नहीं आई, पूर्ववासियों ने भी देखा नहीं, कोई बात नहीं आई। इति ईदृशानि अनेकानि ऐसे अनेक अनेक भगवान की पराक्रम भरी लीलाएं होती रही होती रही। बड़े दिव्य दिव्य वहां यज्ञ वगैरह भी होते थे और इंद्र वगैरह भी कभी कभी वहां आते थे। ऐसी भगवान की लीला होती थी। इन लीलाओं से ऐसा लगता है ये भगवान की कभी कभी किसी भक्त पर विशेष कृपा करा करके कोई लीला करानी होती थी। सुखदेव जी महाराज अब इस दशम स्कंद का अंतिम दृश्य बता रहे हैं, भगवान की लीला का अवसान प्रेम में कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्वारिका में भगवान बड़े आनंद के साथ रह रहे थे। अब ध्यान देना, जैसे गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला की, रास लीला में भगवान और गोपियां मिली, परंतु उस रास लीला का दूसरा स्वरूप गोपियों से वियोग अवस्था को प्राप्त हुए तो गोपियों को वियोग दिया। देखो भगवान क्या देते हैं, भगवान अतिशय कृपा करते हैं तो उसके साथ मिल करके उसको बिछुड़न देते हैं, वियोग देते हैं। एक तो वो आदमी जो भगवान के साथ कभी जुड़ता ही नहीं है, और एक वो जो भगवान के साथ जुड़ा और भगवान के प्रेम का आस्वादन किया और फिर भगवान कृपा करके उसको वियोग देते हैं। उस वियोग के अंदर प्रेम की रक्षा होती है। इसलिए भगवान द्वारिका मथुरा चले गए थे, गोकुल से मथुरा चले गए कंस के बाद, और गोपियों के पास कभी आए भी नहीं। यहां जो भगवान की परिणीता स्त्रियां हैं, प्रेमिकाएं हैं, उन प्रेमिकाओं को वियोग कैसे देवे, इनके साथ तो भगवान का सदा संयोग है। और केवल संयोग के अंदर प्रेम का प्रेम की पूर्णता नहीं होती, और प्रेमास्वादन का भगवान प्रत्युपकार कैसे करते हैं ये केवल संयोग में बनता नहीं है। और प्रीतमाओं से वियोग वैसे भी ठीक नहीं है, क्या करें भगवान, और इनका भी गोपियों के समान कल्याण करना है, इनको भी प्रेम के बदले में जो है बड़ी चीज देनी है, क्या करें। तो सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि ये द्वारिका है सब ऋतुओं में सब फल देने वाली, बड़ी सुंदर द्वारिका, वन उपवन बड़े हरे भरे खिले हुए, 16108 रानियां तो 16108 ही महल, तावद विचित्र रूपों सौ तद गृहेशु महर्धिषु, बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धियों से संपन्न महलों में भगवान भी 16108 रूप बनाकर रहते थे। तो सब पत्नियों को ऐसा लगता था कि भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे पास है। एक बार होली का त्योहार था, उस होली के त्योहार में रंग पिचकारियां सब डालते ही है, तो भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां आपस में होली खेल रही थी, वो उनके ऊपर रंग बरसाए, वो उनके ऊपर रंग बरसाए, ऐसे उनके होली खेलते खेलते ऐसे प्रेम में डूब गए, प्रेम में डूब गए। ध्यान देना, जैसे गोपियों की रास लीला देखने के लिए आकाश में स्वर्ग से विमान भरे हुए देवता आए, ऐसे ही भगवान की ये आज होली त्योहार देखने के लिए, होली त्योहार, होली का उत्सव, होली का जो ये प्रेम का आदान प्रदान देखने के लिए विमानों में बैठे हुए देवता लोग आकाश मार्ग में आए, और जो ही वो पिचकारियां डाल डाल करके प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगे, तो भाई उस समय में जो है भगवान के नाचने में, इनके नाचने में वे सब अपने अपने मृदंग बजाने लगे। मृदंग बजाए, खूब अच्छी जो है वो नाच गान की बातें हुई, पर ये अकस्मात, अब देखो भगवान ने इस नाच गान के बदले में क्या दिया, नाच गान के बदले में ये दिया हो वो गोपी एकदम उन्मत्त हो गई। देखो कृष्ण उनके सामने है, वो कृष्ण उनके पास में है, तो उनके कृष्ण से वियोग की एक अनुभूति हुई। ऐसी वियोग की अनुभूति जैसे कृष्ण हमको छोड़ के कहीं चले गए हो। तो वो रानी हम बोलती है रात्रि में कुर्री को विलाप करते हुए देखकर, कुररि विलपसे त्वं वीत निद्रा न शेषे स्वपिति जगति रात्र्याम ईश्वरो गुप्त बोध वयमिव सखि कच्चित् गाढ निर्भिन्न चेता नलिन नयन हासो दारलीलेक्षितेन। ए कुर्री बहुत विलाप करती हो तुम, तुमको भी हमारे समान नींद नहीं आती, हमसे गाढ़ आलिंगन करके मिला हुआ हमारा प्रीतम जैसे हमको छोड़कर चला गया और अपने कमल के समान सुंदर नेत्रों से हमको देखते देखते हमको छोड़कर चला गया। क्या तुम्हारा पति भी तुमको छोड़कर चला गया, इस कारण से तुमको भी नींद नहीं आती? अरे हमारा पति तो गुप्त बोध है, उसका ज्ञान बड़ा गुप्त है, और तू ये नेत्र बंद करके क्या करती है चकोरी? नेत्र बंद करती है फिर कभी कभी खोलती है, फिर नेत्र बंद करती है चकोरी, तू कोई अपने चकोर को याद करती है क्या? हाँ हाँ करेगी ना, क्योंकि तू हम लोगों को ये बता रही है कि अरे एव रानियों, कोई यदि तुमको छोड़कर चला भी जाए, कृष्ण छोड़कर चला भी जाए, तुम्हारे हृदय में तो बसा हुआ है ना, तुम अपने हृदय में बसी हुई मूर्ति का ध्यान करो। हाँ 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 हाँ, इसीलिए तुम कभी नेत्र बंद करती हो और नेत्र खोलती हो। हा हो, अरे ए ओ समुद्र, तू गर्जना क्यों करता है रे? हाँ तेरी गर्जना का कारण हम समझ गए, तेरे अंदर एक गंभीरता है, उस गंभीरता को हमारे प्राणनाथ ने चुरा लिया है, अब तू उस गंभीरता को लेकर के बेचैन हो रहा है, वैसे ही जैसे हम कृष्ण के लिए बेचैन हो रहे हैं। पर अंदर चंद्रमा तू कैसे घटता जा रहा है रे, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि ये कृष्ण हमारे वंश में पैदा हुआ है, परंतु तू तो क्षीणस्तम है, तू पतला हो रहा है, क्या बात है, जाग बहुत गया ना हमारे समान, क्योंकि हम भी तो उस कृष्ण की बीती बातों को याद कर करके और कैसे पागल सी हो रही है, क्षीण हो रही है, हमारे शरीर का सौंदर्य, हमारे बुद्धि की स्मृतियां उस कृष्ण के बिना क्षीण हो रही है। अरे वो मलयाचल, तेरी तो बड़ी सुंदर भीनी भीनी हवा आती है ना, परंतु क्या बताएं, तेरी हवा चलने से हमारा हृदय फट रहा है, क्योंकि जैसी सुगंध तेरे हवा में आती है ना, ऐसा ही सुगंध तो हमारे कृष्ण में आती थी। अरे मेघ, तू तो सबसे बड़ा विचित्र निकला, तेरी श्यामता को कृष्ण ने ले लिया तो तू रोने लग गया। हाँ आओ मेघ, तू भी रो रहा है और हमारे आंखें भी रो रही है, तुम्हारा और हमारा काम बिल्कुल ठीक हो रहा है। कोयल, तू तो मरे हुए आदमी को जिला देवे ऐसी मीठी बोलने वाली है, तू कभी कभी ऐसी मीठी बोलती है तो ऐसा लगता है कि ये प्राण प्रीतम मिलेगा, क्योंकि कोकिल की आवाज से शकुन होता है, कोयल जब बोले तो शकुन होता है कि तुम्हें तुम्हारा प्रीतम मिलेगा, स्त्रियों को शकुन होता है तुम्हें तुम्हारा प्रीतम मिलेगा। अरे कोयल तो बहुत अच्छी बोलती है, हमारे जले हुए हृदय में तुम एक आशा का संचार कर रही हो। ए नदियों, सारे तालाब सूख गए, इसलिए तुम तालाबों में जाकर नहीं मिलती हो, तुम जाकर समुद्र में मिलती हो, क्योंकि तुम्हारे पति समुद्र है। हमसे तो तुम भी बड़ी अच्छी हो, आखिर तुमसे समुद्र मिलावा तो रहता है, हमारे श्याम सुंदर का तो कुछ पता नहीं है। जाओ जाओ, तुम सब दुख देने वाले हो। अरे ओ हंस, हंस तुम आओ। ये हंस कौन है? हो ये हंस है परम हंस संत महात्मा। ए हंस आओ, हंस स्वागतमास्यताम पिब पय ब्रूहियंग शोरे कथाम। आओ आओ, ये हंस आप बैठो, और सब वापस कुछ बोलते नहीं है। तुम तो परम हंस हो भाई, संत हो ना। तुम एक काम करो, हम कृष्ण के वियोग में जली जा रही है, तुम हमको कृष्ण की कथा सुनाओ, और इतना बता दो कि कृष्ण जहां भी गया है वो वहां स्वस्थ तो है ना, ठीक तो है ना। देखो हंस, तुम हमको उनके समाचार सुनाओगे ना, हम तुमको दूध पिलाएंगे। देखो हम तुमको जो है विशुद्ध दूध पिलाएंगे। हो तुमको दूध और पानी दो अलग अलग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम हमको भी तो विशुद्ध कृष्ण चरित्र सुनाओगे ना, विशुद्ध, उसमें कुछ मिलाना मिलावट नहीं करना। ऐसे हम तुमको विशुद्ध दूध पिलाएंगे। एक बात बताओ कि तुम कहते हो कि वो कृष्ण तुमको याद करता है, चलो चलो, पर हम कैसे जाएं? वहां तो लक्ष्मी पहले से ही बैठी हुई है, इसलिए आलाप है। तुम ऐसी बात कहो हमको कि उस बात में ही हमको कृष्ण मिलन का आनंद मिले। देखो स्त्रियां होती हैं, वो तो जब तक पति की सेवा नहीं कर पाती तब तक उनका पातिव्रत्य वे अपना पूर्ण नहीं मानती हैं। इसलिए पतिव्रता स्त्री तो यही चाहती है, पर करें क्या, उसके वहां लक्ष्मी ऐसी बैठी रहती है, वो हम सबको घूर घूर के देखती है। हम सेवा करना भी चाहती है, लेकिन चरण तो उसने अपने कब्जे में कर लिए, हम करें तो क्या करें। तुम तुम्हारी तरफ से भाई उस कृष्ण की बात कहते जाओ, कहते जाओ। क्या मस्ती से सुखदेव जी महाराज ने वियोग का वर्णन किया है। ऐसे ऐसे भगवान योगेश्वरों के ईश्वर है, उनमें ऐसे ऐसे उनके भाव थे, तो ले भी रहे परमां गति, उन सबको परम गति मिल गई। ये हमने आपको कृष्ण चरित्र सुनाया। अब देखो सारी भागवत में वो बात लिखी हुई नहीं जो यहां मिलेगी, 16108 रानियां थी भगवान के, वो साफ लिखा हुआ है। आसन 16,000 महिष्यश्च शताधिकम्। 16,108 रानिया तासाम स्त्री रत्न भूतानाम अष्टौया प्रागुदार्हिता रुक्मणी प्रमुखा। रुक्मणी आदि 800 महारानिया पटरानिया और 16,100 वे दूसरी रानिया, साफ लिखा है। इनके जो बेटा बेटी हुए वे अतिरथी महारथी हुए, बड़े बड़े महारथी हुए। अंतिम इनके संतान में एक बचेगा तो एक बज्रनाभ बचेगा, जो कि अनिरुद्ध का पुत्र था, वही जाकर के इनकी रक्षा करने वाला, वंश की रक्षा करने वाला हुआ। इन यदुवंशियों की क्या महिमा कह सकते हैं परीक्षित। ये सब के सब बहुत बड़ी संख्या वाले थे। अरे 3 करोड़ और 88 लाख केवल इनके आचार्य थे, केवल आचार्य पढ़ाने वाले गुरुजी, 3 करोड़ 88 लाख। और इनके सैनिक कितने थे कि यत्रा युतानाम अयुतम लक्षेणास्ते स आहुक है। 10,000 को 10,000 से गुणा करो और फिर उस गुणनफल को 1,00,000 से गुणा करो, माने 10,000 × 10,000 × 1,00,000। अब इसका जो गुणनफल आएगा, इतने सैनिक थे, इसलिए सुखदेव जी ने कह दिया कि उनकी संख्या को कौन गिन सकता है, संख्या नाम यादवा नाम कह करिष्यति महात्मा नाम, इनकी गणना कौन करे, बहुत बड़ी संख्या थी इनकी। वे भगवान भाई जब अवतार लिए तो गंगा जी की महिमा कम हो गई। गंगा जी तो एक जगह कल्याण करती है और गंगा जी श्रद्धा होने पर कल्याण करती है। गंगा जी की जिसकी श्रद्धा होगी ना उसी का ही कल्याण हो, हर किसी का कल्याण नहीं करती। और गंगा जी जहां है वहां जाओ पहुंचो तब कल्याण करती है, परंतु भगवान की कथा में बिना श्रद्धा के आकर बैठ जाओ, कथा में ताकत है आपके हृदय में से वो अश्रद्धा तत्व को, अश्रद्धा की गंदगी को बाहर निकाल के रहेगी। पूरी कथा को सुनता है उसके मन में श्रद्धा होती ही है और कथा सब जगह मिल जाती है। तो तीर्थम चक्रे नृपोनम यदजन यदुषु स्वसरित पाद शौचम विद्विट स्निग्धा स्वरूपम व्ययुरजित परा श्री यदर्थेन्ययत्न। भगवान से द्वेष रखने वाले लोग भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए, और जिनके नाम के द्वारा पापों का नाश होता है ऐसे कृष्ण के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वे तो संसार में पाप हल्का करने के लिए आए थे ना। तो ये पाप हल्का, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आए, तो केवल मनुष्यों का ही भार थोड़ा, ये पापों का भार होता है। यदि मनुष्य के हृदय से पाप नहीं निकलते तो भाई वो जो है भार है, पृथ्वी पर भार है। तो सब पापों का नाश करने के लिए भगवान ने जन्म लिया, देवकी के यहां जन्म लिया, बड़ा सुंदर स्वरूप दिखाया, लीलाओं के द्वारा अनेक अनेक कर्म किए कि जिससे लोगों के कर्म शुद्ध हो जाए, और अंत में भगवान ने उद्धव जी को बड़ा विचित्र ज्ञान दिया। उन्हीं भगवान की लीलाओं में डूबे हुए अनेक महापुरुष जंगलों में जा जा करके उनकी लीलाओं में मस्त होकर के अपने जीवन को सफल बनाए। अब देखो सुखदेव जी महाराज आगे बोलते हैं, अब एकादश स्कंद का शुभारंभ है, ये दशम स्कंद यहां पूरा हुआ है। दशम स्कंद की लीलाएं भाई समझ नहीं सकते, ऐसी गंभीर लीलाएं हैं। अब आगे जो लीला कह रहे हैं वो लीला एकादश स्कंद में क्यों दी, ये लीला दशम स्कंद में देनी चाहिए थी, क्योंकि भगवान की लीला इसमें बड़ी विचित्र लीला आएगी। दशम स्कंद में देते पर ये एकादश स्कंद में दी है, क्यों? पहले ही निवेदन किया था कि किसी भी लीला को आप ये देखना चाहते हो कि ये इस स्कंद में क्यों आई है, तो पहले उस स्कंद का नाम देखिए कि वो स्कंद क्या है, उसका नाम क्या है। तो ये एकादश स्कंद है, इस स्कंद का नाम है मुक्ति, और मुक्ति का लक्षण हमारे दूसरे स्कंद के दसवें अध्याय में दिया है। मुक्तिरहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूप का त्याग करके स्वरूप में डूब जाना, इसका नाम मुक्ति है। अन्यथा रूप का त्याग करना और अपने स्वरूप में डूबना, ये मुक्ति का लक्षण है। अब आप आइए, जीव की क्या दशा होती है कि जीव अपने को शरीर मानता है, अपने को संसार का मानता है, वास्तव में वो संसार का है क्या? संसार का नहीं है, पर वो मानता है। जब उसकी मान्यता हट जाएगी तो वो मुक्त हो जाएगा, और जब तक ये मान्यता नहीं हटाएगा तब तक ये ऐसे ही संसार के आवागमन में रहेगा, ये बात है। अब आओ इस कथा प्रसंग पर, देखो सुखदेव जी महाराज के द्वारा चालू किए हुए स्कंद ज्यादा मिलेंगे, परीक्षित के प्रश्न से चले हुए स्कंद कम मिलेंगे। हो ये सुखदेव जी महाराज के द्वारा चालू किया हुआ स्कंद है, दशम स्कंद है वो परीक्षित के द्वारा चालू किया हुआ है, नवम स्कंद है वो परीक्षित के द्वारा चालू किया हुआ है, आठवां स्कंद परीक्षित के द्वारा चालू किया हुआ है, सातवां स्कंद और छठा स्कंद और पांचवां स्कंद ये परीक्षित के द्वारा चालू किए हुए हैं, चौथा स्कंद ये परीक्षित के द्वारा चालू किया हुआ नहीं है और तीसरा स्कंद भी चालू तो सुखदेव जी महाराज का ही किया हुआ है, पर वहां चलते ही प्रश्न हो जाता है, वो सुखदेव जी का ही मान लेते हैं, सुखदेव जी का चालू किया हुआ है। दूसरा स्कंद है वो सुखदेव जी का चालू किया हुआ है। ग्यारहवां स्कंद सुखदेव जी का चालू किया हुआ है, बारहवां स्कंद भी सुखदेव जी का चालू किया हुआ है। ऐसे एक एक स्कंद के ये वक्ता और श्रोता के रूप में अलग अलग वे कारण बनते हैं। तो ये एकादश स्कंद ये सुखदेव जी महाराज के द्वारा कहा हुआ है। वो बोल रहे हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने पृथ्वी का बहुत बड़ा भारी भार हल्का तो कर दिया, कौरवों के साथ युद्ध हुआ पांडवों का, उसके बहाने से पृथ्वी का भार हल्का हो गया, परंतु फिर भी भगवान ने सोचा कि अभी भी भार हल्का नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये यदुवंशी बैठे हुए हैं, अभी ये यदुवंशी मत संश्रयात मेरे आश्रित रहने से बहुत घमंडी है और इनका भार बहुत ज्यादा है। मत संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम, क्या इनका नाश करना बहुत जरूरी है, परंतु इनका नाश मैं कैसे करूं, जिस कुल में जन्म लिया उसी कुल का मैं नाश करूं, ये कैसे संभव है। भगवान ने देखा मैं तो नाश कर नहीं सकता, क्या करूं। तो भाई क्या करूं मैं, भगवान का संकल्प तो सत्य होता है, वो जो सोचते वो काम होके ही रहता है। तो परीक्षित संत महात्माओं ने उनको शाप दे दिया, ब्राह्मणों ने शाप दे दिया और वो कुल नष्ट हो गया। और भगवान ने भी अपना दिव्यादि दिव्य सुंदर शिव विग्रह था वो भी समेट लिया। अब परीक्षित प्रश्न करते हैं कि महाराज जिस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया उस यदुवंश पर ब्राह्मणों की कुदृष्टि हो जाए, ब्राह्मण लोग शाप दे रहे, ये कैसे संभव है। देखो शाप इसलिए हुआ कि भगवान की इच्छा थी, क्या भगवान की इच्छा को कोई मिटा सकता है। तो भी ब्राह्मणों के शाप का कोई कारण तो बना होगा ना, किन निमित्त भगवान को ब्राह्मणों को शाप देना पड़ा। एतत् सर्वम वदस्व मे, सब बात मुझे बताओ। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अब देखो ध्यान देना एकादश स्कंद का नाम क्यों हुआ। जो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान अब द्वारिका में विराजमान थे, वो कालात्मा विराजमान थे भगवान, संघर्ष तो मैं इच्छत, भगवान अपने सारे कुल का संहार करने की इच्छा रखते हुए सब कुल का संहार करें, ये इच्छा थी भगवान की, और संहार के लिए ही वहां पर बैठे हुए थे। लीलाएं तो बहुत रस दी उन्होंने, ताकि मनुष्यों का कल्याण हो सके गाने के लिए पर्याप्त लीलाएं कर दी, और कालात्मना निवसता, अब तो सोच रहे थे कि सबका नाश कैसे और मैं भी यहां से कैसे जल्दी चला जाऊं, ये सोच रहे थे भगवान। उस समय भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे विश्वामित्र जी आए, असित आए, कन्व आए, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद इत्यादि इत्यादि बहुत से ऋषि मुनि दर्शन करने आए। दर्शन करके वे चले गए, रवाना हो गए। रवाना होकर पिंडारक क्षेत्र में आए तो वहां पर ये बालक खेल रहे थे, सांब वगैरह बालक खेल रहे थे। इन बालकों के मन में जाने क्या सूझी, देखा कि उधर से वो ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने सांब को एक स्त्री के कपड़े पहना दिए। देखो है तो वो लड़का, लेकिन लड़की के कपड़े पहना दिए, लड़की के कपड़े पहनाए और आगे खूब से कपड़े रख करके उसको ऐसा बनाया जैसे इसके कोई बाल गोपाल होने वाला है, ऐसा उसको बना करके घूंघट कटा दिया। उधर से बाबा जी आए सब, बाबा जी बाबा जी पंडित पंडित बाबा जी, बोलो बेटा क्या बात है। महाराज हमारे तो कोई बात नहीं है, ये एक जो है स्त्री गर्भवती है, ये आपसे पूछने में संकोच करती है, इसके मन में तो ऐसा है कि हमारे बेटा हो, पर महाराज आप बताओ ना इसके बेटा होगा या बेटी होगी, आप आशीर्वाद दे महाराज क्या होगा इसके बेटा बेटी में से। ऋषि मुनि अच्छा हमसे ही तुम ऐसी बात करते हो, तुम्हारे बाप का तो दर्शन करते करते हम लोग तृप्त नहीं होते, और उनके तुम ऐसी औलाद हो कि तुम हमसे प्रश्न करते हो और हमसे विनोद करते हो और हमसे मजाक करते हो, जाओ जाओ तुम्हारे कुल का नाश करने वाला इसका मूसल पैदा होगा। मूसल का नाम क्यों लिया भाई, मूसल का नाम क्यों लिया, कि मूसल हर घर में होता था, भोजन करते थे लोग उस समय पिसे हुए धान को कम खाते थे, कूटे हुए धान को खाते थे, क्योंकि पिसा हुआ धान होता है उस धान में उस धान की जो कणिका होती है वो एकदम पिस जाती है, उसका सार खत्म हो जाता है, और जो कुटा हुआ धान होता है उसमें उसकी कणिका उसका कस होता है वो यूं का यूं रहता है, वो जब उबलता है तो उसका कस उसी में ही आ जाता है। पिसा हुआ जो धान होता था वो पिसने से उसके अंदर जो एक जोश होता है वो जोश हवा में फैल करके खत्म हो जाता है, और कुटा हुआ धान होता है उसमें उस धान का जो धानत्व है उसका जो वैशिष्ट है उसका गुण धर्म है वो नष्ट नहीं होता, तो उस जमाने में जो है धान कूटते थे, चाहे शाली धान हो चाहे चावल हो चाहे बाजरा हो चाहे और कोई हो, कूटते थे उसको, थोड़ा छोटा कर लेते ताकि वो पानी में गलने में सुविधा हो उसको, लेकिन उसको एकदम पीस करके महीन आटा करके उसका स्वत्व समाप्त नहीं करते थे। तो मूसल सब जगह ही रहता, मूसल भारी भी होता है, और ऋषि मुनियों ने कहा ऐसा कहा तो मूसल पैदा हुआ तुम्हारे, ऐसा कहकर चले गए, और आगे जाकर के देखा वो तो चले गए, फिर कपड़े अपने यहां से हटाए, कपड़े हटाए तो एक कपड़े हटाए दो हटाए, अरे लोहे का मूसल निकले आया उनके, लोहे का मूसल निकले आया, तो अब बच्चे बिचारे सब डर गए, तो वे बच्चे गए द्वारिका में सभा के अंदर, और वहां जाकर के और उन्होंने सबके बीच में बात रख दी, आज तो हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, हमने साधु संतों को छेड़ दिया और उन कुल नाश का साप दिया, और ये देखो इसका प्रमाण है कि लोहे का मूसल ये कपड़ों में निकला है, तो इसमें क्या घबराते हो, इसको अभी हम पीस करके राख करके और इसको समुद्र में डुबा देंगे। देखो उन्होंने इतनी बड़ी आफत आई, उन्होंने भगवान को याद नहीं किया हो, सभा में रहने वाले लोगों ने, और छोटे छोटे काम के लिए भगवान कृष्ण को याद कर लेते, आज याद नहीं किया, तो उसको जो है पीस करके उसका कचरा था सब समुद्र में डाल दिया, और पीसा भी कैसे, जैसे चंदन पीसते हैं ना, चंदन को घिसते हैं, घिसते 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 चंदन इतना सा रह जाता, इतना सा तर्जनी में और अंगूठे के बीच थोड़ा सा वो पकड़ में आए, आगे वो घिसे तो भाई अंगुली घिस जाए, तो वो घिसा नहीं जाए, वो अंगुली कौन घिसा है, इतना सा लोहे का टुकड़ा उसको भी डाल दिया, वो लोहे का टुकड़ा अंदर गया जाकर के एक मछली ने उसको यू ले लिया, और वो जो कचरा था वो लहरों के अंदर फैल करके समुद्र के किनारे चला गया, वहां जाकर एरक घास हो गया, और जो मछली ने तो लोह का टुकड़ा लिया उसको एक धीवर ने मछुए ने जाल में उसको फंसा लिया, और जब ले जाकर के उसको मछली को काटा तो उसके अंदर से लोहे का टुकड़ा निकला, वो ले जाकर के एक लोहार को दे दिया कि भाई तेरे काम आएगा, वो उधर तो देना हुआ लोहार को, और उसी समय में लोहार के पास एक शिकारी पहुंचा, उसने कहा कि भाई तुम्हारे पास जो लोहे का टुकड़ा आया इसको हमारे बाण के आगे लगा दो, हमारा बाण थोड़ा भोटा हो गया इसको तीखा करना है, ये तुम्हारा लोहे का टुकड़ा ठीक है आगे लगा दो, तो उसने उसको आगे लगा दिया और वो चला गया, ये सब कुछ हो गया, लेकिन किसी ने भी भगवान को इस लीला में याद नहीं किया, तो भाई भगवान भी बिना बुलाए उस दिन सभा में क्यों जाते, भगवान तो काल रूप से ही रह रहे थे, भगवान ने तो इसका उल्टा अनुमोदन किया कि ठीक हो गया। ये है कथा। अब ये मुक्ति का स्कंद है हो, और अन्यथा रूपम परित्यज्य स्वरूपेण व्यवस्थित, ये मुक्ति का लक्षण है। तो बच्चों की क्या गलती हुई, थे तो वो लड़के और बन गई वो लड़की, और बना मतलब केवल केवल ऊपर ऊपर से कपड़ा पहन के लड़की बन गई। ऐसे ये जीव है तो परमात्मा का अंश, लेकिन मानता है क्या कि मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं कि मैं क्षत्रिय हूं कि मैं वैश्य हूं कि मैं जो है शूद्र हूं कि मैं सन्यासी हूं कि मैं क्या, ऐसे कुछ न कुछ पकड़ लिया अपने को, न होते हुए भी मान्यता कर ली। और सत्संग मिले, संत मिले तो संतों से और सत्संग से भी, इनसे भी क्या लौकिक काम पूरा करें, लौकिक काम। और आफत आ गई, भगवान को याद नहीं करेंगे। भगवान को याद करें तो आफत टल जाए, आप भगवान को याद करेंगे नहीं, उनकी ये दशा हुई। तो मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम हित्वा, मुक्ति किसको बोलते हैं, अन्यथा रूप का त्याग करके स्वरूप में स्थिति हो, और अन्यथा रूप को पकड़ लोगे तो बंधन होगा। और भाई गलती हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो भगवान से कम भगवान को याद करके अपने आफत को अपनी गलती को भगवान को बताओ तो सही, ना भगवान को भी याद नहीं किया। इसलिए ये प्रसंग यही कहना उचित लगा। अब देखो ये करते ही कथा प्रसंग बदल देते हैं, ये करते ही आगे कथा प्रसंग बिल्कुल बदल देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह, के भाई भगवान के द्वारा रक्षित इस द्वारिका में संत महापुरुष बराबर आते रहते थे, तो एक बार नारद जी महाराज आए तो नारद जी महाराज को देख करके वसुदेव जी ने कहा कि हे महाराज, आप संतों के लक्षण बताइए, भागवत धर्म बताइए। अब देखो पिछले अध्याय से कोई संबंध नहीं है, ये अध्याय क्यों दिया पहले कि प्रत्येक अध्याय में एकादश में आने वाली कथा में इस कथा को याद रख करके चलते रहना चाहिए कि हम जीव वास्तव में जीव है नहीं, जानबूझ करके जीव बने। शुरू शुरू के जो पांच अध्याय है जहां नौ योगेश्वरों के संवाद में ये होगा, तो ये पांच अध्याय क्या है, ये हमारे पांच कर्मेंद्रियों को शुद्ध करने के पांच अध्याय हैं। सारे विषयों का ग्रहण करने वाले पांच इंद्रियां हैं, खास शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, बस ये पांच हैं। तो यही पांच अध्याय, सारा ज्ञान आ जाएगा इनमें। बहुत विचित्र अध्याय है, तो एकदम इसको अलग करके और अब कथा कह रहे, नहीं तो बात तो यह है, ये लीला ही भगवान की लीला कहने थी, लीला पहले ही बोल देते। और ये छोटे छोटे बच्चे थे, ये जाम्ब वगैरह, अब तो जाम्ब के पोते पड़पोते लड़पोते सड़पोते हो गए, तो अब ये कथा यहां कही कथा, ये मस्ती से कहने वाली बात नहीं है। मस्ती से भी कहते हैं सुखदेव जी महाराज, ये मस्ती से नहीं है, सोच समझ के कही भी कथा है। यह मुक्ति का अध्याय है, तो जीव को सावधान रहना चाहिए कि मेरा असली रूप क्या है और मैंने क्या रूप पकड़ रखा है। वसुदेव जी महाराज अब सत्संग कर रहे हैं यहां, क्यों वसुदेव जी आप दशम स्कंद में क्यों नहीं सत्संग किए, कि भाई उस समय हमें हमारे स्वरूप का बोध करने की इच्छा ही नहीं हुई। अब देखो वसुदेव जी महाराज नारद जी के पास बैठ करके सत्संग करते हैं, भगवान से क्यों नहीं की, भगवान से भगवान की बात नहीं पूछनी चाहिए, भगवान से तो संतों की बात पूछनी चाहिए और संतों से भगवान की बात पूछनी चाहिए। आत्म कल्याण के विषय में भगवान इतना नहीं बता पाएंगे जितने संत बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि संत को पता है कि काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, बंधन क्या है, अहंकार क्या है, क्योंकि संत बिचारा इन सब की थपेड़ों में से गुजरा हुआ होता है। भगवान तो पहले से ही निष्काम है, भगवान तो पहले से ही अक्रोध है, भगवान तो पहले से ही निर्मम है, भगवान पहले से ही निरंकार है, जो अहंकार की चोट खाया हुआ वो बताएगा ना। देखो हवाई जहाज के अंदर बैठा हुआ जो जोधपुर के ऊपर से उड़ के जाएगा, वो जोधपुर की गलियों के बारे में क्या बताएगा कि भाई ये गांधी मैदान कहाँ है, वो क्या हो गया भाई जोधपुर, अरे आप तो जोधपुर जाके आए, आप जोधपुर जाके आए, अरे भाई हम तो बम्बई से आए थे, जोधपुर में हवाई जहाज ठहरा और फिर हम तो ऊपर आ गए, अब यहाँ आ गए, दिल्ली आ गए, जोधपुर से आए, जोधपुर से, पर जोधपुर का हमको मालूम नहीं है, लेकिन जोधपुर के अंदर रहने वाला है वो बता देगा, ये ऐसे रास्ता है, ये रास्ता, ये गांधी मैदान है, उधर से जाओ, उधर से जाओ, एक एक गली के बारे में बता देगा। ऐसे साधक के लिए कल्याण करने में कहां बाधा आती है और कैसे दूर होता है वो बाधा, ये संत बता सकता है, भगवान नहीं बता सकते। क्या विचित्र प्रसंग है ये। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वसुदेव जी ने कहा कि हे जो है नारद जी महाराज, हम आपसे भागवत धर्म पूछते हैं, धर्मान भागवतांश तव, भागवत का अर्थ क्या हुआ, संतों के महात्माओं के लक्षण बताओ। तो नारद जी कहने लगे कि संतों के लक्षण हम क्या बताएं महाराज, आपको आपने पहले सुना होगा, ये वसुदेव जी तो भागवत सुनी नहीं। देखो भागवत के नाम माइयों बाइयों से प्रार्थना है कि भागवत नाम आवे ना, तो एक तो होती है भागवत कथा वाला भागवत, एक भागवत बोलते हैं संत महापुरुषों को भागवत, दोनों को ही भागवत बोलते हैं। तो यहाँ भागवत के विषय में नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जो भागवत अर्थात संत महात्मा हुए उनके क्या लक्षण है। तो हमारे नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो प्रियव्रत के बेटा अग्निंद्र हुए, अग्निंद्र के बेटा नाभि हुए, और नाभि के बेटा ऋषभदेव जी हुए, ऋषभदेव जी के 100 बेटा हुए थे, 100 बेटों में 9 योगेश्वर हुए थे, योगेश्वर कबीर हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलश चमस कर भाजन, ये 9 योगेश्वर हुए। ये अपनी योग शक्ति के द्वारा आकाश में विचरण करते हैं, छिपे रहते हैं, मौके पर प्रकट होते हैं। अव्याहतेष्ट गत है, इनकी गति को कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे वो सब जगह विचरणशील है। तो एक बार विदेह नगर में महाराज निमि ने यज्ञ किया, ज्ञान यज्ञ, जैसे ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ किया। उस ज्ञान यज्ञ में बड़े बड़े महापुरुष आए थे, तो बिना बुलाए आकाशी योगेश्वर लोग आ गए। राजा को बड़ी खुशी, अरे आप आ गए, योगेश्वर निहाल कर दिया महाराज। अब हमको बताओ कि संसार में मनुष्य का निश्चित कल्याण किससे होता है, क्योंकि मानव शरीर की आयु का कुछ पता नहीं है, कब क्या कुछ हो जाए कोई पता नहीं है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, और उसमें भी भगवान के प्रिय संतों का मिलना और भी दुर्लभ है, और संतों के पास में जो सत्संग किया जाता है, ये सत्संग बहुत बड़ा खजाना है, खजाना। कई कई लोग व्यंग करते हैं, अरे तुम सत्संग में जाते हो, तुम्हें क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ बताओ। अरे लाभ कोई बाहर से दिखने वाला थोड़ी होता है, कोई रुपया मिलता हो, कोई शरीर में जवानी आती हो, कोई भूख प्यास ज्यादा कम लगती हो, कोई हाथों में पैरों में कोई चाल में ढाल में काम करने में कोई अंतर आता हो, ये थोड़ा ही होता है। सत्संग में विचार मिलते हैं, तो विचारों में फर्क पड़ता है, और वो विचारों के फर्क को बाह्य रूप में देखना चाहते हैं, वो कैसे देखेंगे भाई। अरे सत्संग की जो निधि है वो समय पर काम आती है, जैसे गड़ा हुआ खजाना है, वो आप पहले खूब अपने पास के रुपए पैसे सब देख लेंगे, सब अब सब खत्म हो गए, तब खजाना निकालोगे समय पर। और ये खजाना ऐसा है कि इस जन्म में अगले जन्म में कितने ही जन्म में इसको काम में ले सकते हो, इसकी कभी कमी नहीं आती। तो सत्संग सेवधिर निर्णाम, सेवधि बोलते निधि को, एक छिपा हुआ बहुत बड़ा खजाना होता है उसको सेवधि बोलते हैं, सेवधि कब काम आ जाए पता नहीं है, सत्संग करो। तो महाराज आज सत्संग मिल गया तो आप हमको भागवत धर्म बताओ महाराज, भागवत धर्म, धर्मान भागवतान ब्रूत। तो नारद जी कह रहे हैं कि देखो वसुदेव जी महाराज, उस समय में कवि नाम के एक महापुरुष थे, वो खड़े हुए। कवि ने कहा कि महाराज जो भगवान का भक्त होता है उसका सबसे पहला लक्षण है निर्भय होता है, वो निर्भय। गीता के 16वें अध्याय में जहां दैवी संपत्ति का वर्णन किया वहां सबसे पहले अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभयम निर्भय होता है। भगवान का भक्त होता है वो निर्भय होता है। किस बात का भय भाई? मृत्यु का भय तो जीवन राम जी ने दिया है, राम जी अपने अवधि तक रखेंगे और बाद में ले जाएंगे, बस हो गया काम। तो निर्भय होता है और वो ये जो संसार के विषय होते हैं इन विषयों से वो डरता रहता है और भगवान के भरोसे वो बिल्कुल आंख संसार में आंख बंद कर लेता है, कोई उससे लेना देना नहीं है। निश्चिंत होकर के भगवान के मार्ग में चलता है, कहीं उसके गिरने पड़ने की संभावना नहीं है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से और अपने स्वभाव से जो कुछ वो व्यक्ति कर्म करता है सब भगवान के अर्पण करता है। महाराज आपके अर्पण है। देखो कोई चोर कहेगा कि मैं भी चोरी करके भगवान को अर्पण कर दूं तो क्या भगवान मान लेंगे? तो हम आपसे एक बात करते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आए तो क्या आप मेहमान को खराब चीज खिलाओगे? आप मेहमान को अपनी शक्ति से बढ़िया चीज खिलाएंगे, बढ़िया से बढ़िया खातिरदारी करेंगे। ऐसे ही भगवान के लिए जो कर्म अर्पण करेगा वो खराब चीज क्यों करेगा? भगवान के लिए, भगवान के लिए तो बढ़िया कर्म करेगा, उत्तम कर्म करेगा। चोरी करना अच्छा थोड़ा ही, उत्तम कर्म की क्या पहचान? कि भाई जो हमारे प्रति किया जाए हमको अच्छा लगे वो उत्तम कर्म होता है, हमको अच्छा लगे वो, हमारे प्रति जो व्यवहार अच्छा लगे वो उत्तम व्यवहार वो हम दूसरों के साथ करें। और फिर भगवान है वो, तो भगवान के लिए तो भाई कितना अच्छा व्यवहार होना चाहिए। और संकल्प और विकल्प का त्याग करें, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, कोई इसमें फायदा नहीं है। एक स्वयं ज्योति जी महाराज थे, स्वामी जी महाराज ने दर्शन किए थे। उन स्वयं ज्योति जी महाराज को सेठ जी ने कहा था जीवन मुक्त महात्मा है। सेठ जी हर किसी को सर्टिफिकेट देते नहीं थे। उनके पास लोग गए क्या कि महाराज कल्याण कैसे हो? तो वो थोड़े यूपी साइड के थे तो कहा कि न्यू हो न्यू न हो ये बात छोड़ देना चाहिए और भगवान को हाथ जोड़ लेना चाहिए, बस इसी में ही कल्याण है। हम तो यूं ही साधु मोड़ा हो गए, ये साथ में बात, हम तो यूं ही साधु मोड़ा हो गए। न्यू हो और न्यू न हो ऐसा विचार छोड़ दो, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए ये मन में कोई विचार मत रखो और भगवान को हाथ जोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। भगवान की लीलाओं को गाओ, रो, हंसो, परंतु लोगों के बीच में मत करो ऐसा। किसी भी व्यक्ति को पता न चले कि हम भगवान के लिए रोते हैं कि हंसते हैं कि क्या करते हैं। बड़ी गोपनीय चीज है ये किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। पारस भाग में आता कबीर जी का लिखा हुआ पारस भाग, कोई भजन करने वाला व्यक्ति हो और उसके पास कोई आदमी आ जाए तो क्या करे? कि सोने की मोहरों की यदि थैली हो तो वो खोल के रख दो, परंतु अपने भजन की गुप्त बात है उसकी महिमा उसके सामने मत कहो। बताया सोने की मोहरे खोल के रख दो, ले जा बोले मेरे अंदर की मोहरे मत ले तू। ऐसे इसलिए ऐसे महापुरुष होते हैं, हर किसी को बताते भी नहीं है। कोई अधिकारी होता है तो बतावे क्यों, बताने का दुरुपयोग कर लेते हैं। तो भाई ये चीज किसी को बताने की नहीं होती, लोक बाई है। कहते भगवान के लिए कहते नाचो गाओ, नाचो भी लिखा है पर लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अकेले में कथा में नाचते हो। कथा में कितना कथा का अपमान होता है, भगवान का अपमान होता है, अपने आप का अपमान होता है, प्रदर्शन होता है, झूठा प्रदर्शन होता है। क्या वास्तव में वैसी भक्ति है कि जिसके लिए आप लोक लाज छोड़कर के भी नाच लेते हो? क्या ऐसी भक्ति उमड़ गई? केवल लोक दिखावा है। जब भागवत जैसे अनुष्ठान में भी ये यदि पाखंड ये लोक दिखावा होगा तो फिर भागवत का हमको क्या लाभ मिलेगा? ये बिल्कुल नाचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये हिसाब लिखा है कि भाई लोगों को पता न चले। नाचो तो अपने अंदर नाचो, अपने मकान में, अपने घर में अपना किवाड़ बंद करके बिल्कुल अकेला कमरा हो वहां नाचो भगवान के सामने। कई की संत ऐसे हुए स्त्री का वेश बना कमरे में स्त्री का वेश रखते थे, स्त्री का वेश बनाकर भगवान की प्रेमिका होकर गोपिका होकर और भगवान के सामने खूब नाचते, घुंघरू रखते, घुंघरू उनके पैरों में इनमें रखने वाले, फिर अपना नाच लिया गा लिया मस्ती आ गई रख दिया और वापिस बस अपने जैसे है वैसे आ गए। कोई किसी को पता नहीं चले ऐसी। और जितना भी ये स्वरूप दिखता है जगत का इसको भगवान का स्वरूप समझो। सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम। राजा ने देखा कि भाई बाबा जी तो बहुत अच्छा उत्तर देते हैं, अब दूसरा प्रश्न किया कि महाराज भगवान के भक्तों के प्रकार क्या है? कि देखो भगवान के भक्तों के कई प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं बहुत ऊंचे भक्त होते हैं, एक होते हैं दो नंबर के भक्त, एक होते हैं तीन नंबर के भक्त। सब प्राणियों में एक भगवान को देखने वाले होते हैं वो एक नंबर के भक्त होते हैं। और जो भगवान को अलग मानते हैं, भक्तों को अलग मानते हैं, भगवान के और लोगों को अलग मानते हैं, द्वेष करने वालों को अलग ढंग से देखते हैं, ऐसी अपनी दृष्टियों का जो भेद करने वाले होते हैं वो दो नंबर के भक्त होते हैं। और सबसे नीचे भक्त वो होते हैं कि जो पूजा के समय में तो बस आंख भी बंद कर लेंगे और पूजा करेंगे, जैसे भाई क्या क्या पता कितने तल्लीन हो गए, और पूजा के बाद लोगों से राग द्वेष करते हैं, इसलिए वो तीन नंबर का भक्त होता है। एक जो कहीं राग द्वेष नहीं करते, कितना ही विषय मिल जाए या न मिले राग द्वेष नहीं करते, वो सबसे बढ़िया ऊंचे भक्त होते हैं। एक शरीर की जन्म मृत्यु पर और जो है हर्ष और शोक के अवसर पर और भूख प्यास पर, इन छह अवस्थाओं में जो विचलित नहीं होते वो ऊंचे भक्त होते हैं। भगवान के नख का ध्यान करके उनकी जो कांति है उस कांति को अपने हृदय में बैठाकर जो अपना अज्ञान दूर करने वाले होते हैं वो एक नंबर के भक्त होते हैं। राजा ने प्रश्न किया कि महाराज ये भगवान की माया माया लोग बोलते हैं, ये माया क्या चीज होती है? कहते हैं ये संसार बनता है ना, ये भगवान की माया है, और संसार लीन होता है ये भगवान की माया है। ये जो जीव राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि करता है ये भगवान की माया नहीं, ये जीव की माया है, ये भगवान की माया नहीं है। कहा कि महाराज ये जीव अपनी तरफ से जो माया बनाता है उस माया से किस प्रकार से पार हो महाराज? तो कहते हैं प्रबुद्ध भगवान कहते हैं कि देखो प्रबुद्ध ऋषि बोलते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है, नौ प्रश्नों के उत्तर है। तो आपको संक्षेप में बता रहे हैं, क्यों बहुत सी बातें आपकी आ चुकी हैं। तो प्रबुद्ध बोलते हैं कि किसी भी कर्म को करो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम विषय भोग का परिणाम क्या होगा, उस परिणाम पर विचार करो। देखो गीता कहती है परिणाम पर विचार मत करो और कर्म करो, और ये बोलते हैं कि विषय भोगों के भोगने का परिणाम क्या होगा उस पर जरूर विचार करो। तो कर्म पर तो कर्म के फल को नहीं देखना है, पर विषय के फल को देखना है। विषय के फल पर यदि हमारी पहले विषय का फल भोगना अलग चीज है और कर्म करना अलग चीज है, तो विषय फल का अंतिम परिणाम क्या होता है उस पर देखना चाहिए। यदि किसी ने धन कमाना अपना जीवन का लक्ष्य किया है, धन रूपी विषय मिले, तो भाई उससे हमको कितनी प्रीति मिलेगी, का प्रीति साधिते चले, चलायमान धन से हमको कितनी देर सुख मिलेगा। सांप के मुंह में आया हुआ मेंढक अपने मुंह से लप लपा करके मच्छर को खाकर कितनी देर पेट भरेगा, ऐसे हम लोगों को विचार करना चाहिए। यदि अपनी बनाई हुई माया पर विजय प्राप्त करनी है तो सद्गुरु की शरण में जाओ, जिज्ञासु जिज्ञासु बनकर जाओ, और वो गुरु महाराज शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में वो निष्णात हो, और भागवत आदि शास्त्र पढ़ो, प्राणियों के साथ मित्रता का बर्ताव करो, और जो है अहिंसा रखो, ब्रह्मचर्य रखो, सुख और दुख में समता का भाव रखो, और संतोषम येन केनचित, जैसी भी परिस्थिति आए उसमें संतुष्ट होकर के रहो, भगवान के गुणगान करो, परस्पर में भगवान की चर्चाएं करते रहो, नाचो गाओ अकेले में पर लोगों को पता न चले, और कभी कभी एकदम चुप हो जाओ, वो व्यक्ति इस माया से पार हो जाता है। कहते हैं महाराज भगवान है ये हम कैसे विश्वास करें। तो पिपलायन बोलते हैं कि भगवान के विश्वास के लिए जगत बनाया, और जगत बनाया ही क्यों है, जगत बनाया है तो इसका मतलब कोई न कोई बनाने वाला है। कौन है भाई बनाने वाला, कोई न कोई बनाने, जो बनाने वाला है वो ही भगवान है। और जगत का पालन कौन कर रहा है, जो कर रहा है सो भगवान है। और ये जगत प्रतिक्षण नष्ट होकर किस में जा रहा है, जिसमें जा रहा है वो भगवान है। कि महाराज बहुत दूर फेंक दिया हमको, आपने तो जगत की बात कर दी, आप हमको और नजदीकी से समझाओ। यत स्वप्न जागर सुषुप्ति सुसत बहिश्च, और नजदीक आ जाओ, तुम्हारी जागृत अवस्था को कौन देखता है, तुम्हारी स्वप्न अवस्था को कौन देखता है, तुम्हारी सुषुप्ति अवस्था को कौन देखता है, सुषुप्ति अवस्था में कौन कहता है कि मैं सुखपूर्वक सोया, अहम सुखेन अस्वाप्स्वम न किंचित अवेदिशम, सुखपूर्वक सोया लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला, ये किसने कहा है, जिसने कहा है उसका नाम परमात्मा है। ये मन है ये जिसमें प्रवेश नहीं करता है, परंतु मन के अंदर मनन करने की शक्ति जिससे मिलती है उसका नाम परमात्मा है। देह इंद्रियां प्राण इनको जो संचालित करने वाला है उसका नाम भगवान। कोई एक बात हो तो बतावे, कितनी बातें हैं भगवान के प्रमाण में, मानो तब ना। कहते हैं मानने के लिए पर्याप्त बातें हैं। शब्दोपि बोधक निषेध तयात्म मूल है, शब्द भी वहां तक जा नहीं सकते हैं, परंतु शब्द है ये जगत का तो निषेध करते ही है ना, तो ये किसके आधार पर निषेध करता है शब्द। जैसे कोई अपने यहां का भाई अमुक आदमी यहां है क्या, क्या अमुक आदमी नहीं है जी, तो नहीं है जो बोलने वाला है वो भी नहीं है क्या, वो तो है। ऐसे कहते हैं कि आकाश नहीं है, वायु नहीं है, और अग्नि नहीं है, जल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, सब नहीं है, तो भाई ये नहीं कौन बोल रहा है, जो बोल रहा है वो तो है ही ना, तो सबका निषेध करने के बाद भी जो रहता है उसका नाम भगवान है। ब्रह्मैव भाति सदसत्य तयो परम यत, ये ज्ञानात्मा कह दो, सूत्रात्मा कह दो, और जो है जब उसमें क्रिया शक्ति की प्रधानता होती है उसको सूत्रात्मा बोल देते हैं, ज्ञान शक्ति की जब उसमें प्रधानता हो उसको महतत्व बोलते हैं। वो एक ही ब्रह्म है, अनेक रूपों में दिखता है, और वो उपलब्धि मात्रम शाश्वत अनपाई और उपलब्धि मात्रम, भगवान उसको बोलते हैं जो उपलब्ध होता है, जो मिलता है हमको, उसका नाम भगवान है। तो मिलता और बिछुड़ता उसका नाम भगवान नहीं है, बिछुड़ता तो है ही, सब बिछुड़ते हैं, वो भगवान नहीं होता। भगवान वो होता है जो बिछुड़ता नहीं है। पर ये बात कब समझ में आती है, जब भगवान के चरणों का प्रेम पूर्वक ध्यान करते हैं, भगवान में अनुराग होता है, तब ये बात उस अनुराग के तालाब में ठहर जाती है। राजा ने कहा कि महाराज कर्मयोग क्या होता है, हम बच्चे थे तब संतों से कर्मयोग पूछा तो बताया नहीं, तो कहते हैं ये कर्मयोग तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब देखो गीता का कर्मयोग अभी भूल जाना, अभी भागवत की कर्मयोग, क्या देखो भगवान की पूजा करना होता है, उनकी सब अंगों से पूजा होती है, और उनके अंग की, उपांगों की, पार्षदों की एक विधि पूर्वक पूजा होती है, तुम बच्चे क्या समझो उस बात को। तो भगवान की पूजा को कर्मयोग बोलते हैं। सातवां प्रश्न किया कि महाराज भगवान ने कितनी कितनी लीलाएं की है और कौन कौन सी लीलाएं आगे करेंगे ये बताओ। तो द्रुमिल ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तुमको कोई नहीं दे सकता। तुम यदि ये पूछते ना कि पृथ्वी पर मिट्टी के कण को गिन करके बताओ तो हम गिन करके बता देते हैं, आकाश के तारे बताओ तो बता देते हैं। अरे जो भगवान ब्रह्मा के रूप में संसार को बनाते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और जो है शिव के रूप में संहार करते हैं, उनकी लीला को कौन बता सकता है भाई। वे भगवान दक्ष प्रजापति के यहाँ पैदा होने वाली कन्याओं से जो धर्म के साथ विवाहित हुई थी, उनमें एक मूर्ति नाम की पत्नी थी धर्म की, उससे नर और नारायण दो पैदा हुए। वे तपस्या करने लगे तो इंद्र को डर लगा, उसने अप्सराओं को भेजा, नर नारायण तपस्या में बैठे रहे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो भाई एक मिट्टी का ढगड़ा है और एक पत्थर का पत्थर पड़ा है, पत्थर पानी डालो दोनों पर तो पत्थर वाले पर पानी डालो पत्थर के कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जो मिट्टी का लौंदा है उस पर पानी डालो वो बिखर जाएगा। ऐसे ही जिसका हृदय विषयों को देखकर पिघल जाता है वो उसका हृदय कच्चा होता है, और जो विषयों को देखकर पिघलता नहीं वो पत्थर के समान कठोर होता है। हमारे नर नारायण जी का हृदय बड़ा कठोर था, किसमें, भगवान के भजन में। तो इंद्र की यहां पर कुछ भी दाल नहीं गली, उल्टे भगवान ने फूंक लगाई, ए अप्सराओं इधर आओ, ओह ऐसे फूंक करके अनेक अप्सराओं को उन्होंने पैदा किया, इसमें से एक ले जाओ और इंद्र को दे दो। ये नर नारायण ने इंद्र के एक थप्पड़ी मारी एक तरह से, उसमें उर्वशी नाम की एक पत्नी जो थी अप्सरा उसको वो ले गए। इंद्र को बड़ी लाज आई, शर्म आई, करे ऐसे नर नारायण को मैं तपस्या से डिगा रहा था। फिर वो आया और क्षमा याचना की, नर नारायण ने क्रोध नहीं किया इंद्र पर, और उसने आकर के क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने पर भगवान ने यही कहा, देखो इंद्र अब तक हुआ सो हुआ, अब कोई बेचारा तपस्या करे तुम्हारी तरफ से उसको किसी प्रकार से ये अप्सराएं वगैरह भेज करके उसमें बाधा मत डालना। ऐसी ऐसी लीलाएं हुई, ऐसे उन्होंने ज्ञान प्रधान लीला की और जो है क्रिया प्रधान लीला की। जैसे वामन भगवान है, जैसे वराह भगवान है, जैसे नृसिंह भगवान है, ये सब क्रिया प्रधान लीलाएं हैं, और जैसे हंस भगवान है, जैसे दत्तात्रेय भगवान है, जैसे ऋषभदेव भगवान है, जैसे व्यास भगवान है, ये सब ज्ञान प्रधान लीलाएं हैं। ऐसे ही भगवान की लीलाएं आगे भी होती रहेंगी, हर अवतारों में, हर कल्पों में, हर समय में होती रहेगी। राजा ने पूछा कि महाराज, जो व्यक्ति भगवान की तरफ नहीं चलते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे अशांत पुरुष रहते हैं, हरदम रात दिन चिंतित रहते हैं, चेहरा देखो एकदम कड़ा कलूटा हुआ, खूब पैसा है, खूब है, लेकिन यहाँ देखो चेहरा एकदम काला कलूटा हुआ। एक तो रंग का काला होता है, एक केवल चेहरा बहुत काला कलूटा, वो क्या है, अंदर की जो चिंता की भाप उठती है ना, वो भाप आकर के यहाँ जमा हो जाती है, काला कलूटा चेहरा, भद्दा चेहरा, वो अशांत चित्त वालों का रूप होता है। उनकी क्या दशा होती है? चमस ऋषि कहने लगे कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्य सब प्रकार के जो लोग हैं, इनको भगवान की प्राप्ति में लगना चाहिए, परंतु जो लोग संसार के भोगों में पड़े हुए हैं और तरह तरह का हिंसात्मक कर्म करते हैं, यज्ञ आदि, और जो विद्या आदि का घमंड करते हैं, और जो शरीर कभी रहने वाला नहीं है उसको लेकर नाना प्रकार के मनोरथ करते रहते हैं, वे अंत में जाकर के नरक में गिरते हैं। ये विवाह वगैरह होता है, साफ लिखा है, विवाह वगैरह किस लिए होता है? गृहस्थ का सुख लेने के लिए नहीं होता, ये विवाह होता है धर्म की रक्षा के लिए, आगे संतान बने, संतान के लिए विवाह होता है। पुराने जमाने में ऐसी बात सुनने में आई, एक संतान हो गई, अब जो है वो भजन में लगते थे, संसार को देख लिया और आगे आने वाली संतान हो गई, बस ठीक है। भोग भोगना उनका उद्देश्य नहीं था, साफ लिखा है, एवं व्यवाय प्रजया न रत्या इमं विशुद्धम न विदु स्वधर्मम, इस धर्म को लोग जानते ही नहीं है तो फिर नरकों में जाना ही पड़ेगा। यद घ्राण भक्षो वीत स्वरायास तथा पशोरा लभनम न हिंसा, यज्ञ के अंदर हिंसा होती है, अरे अहिंसक बनाने के लिए हिंसा है, सब ले तलवार ले और कप और उस पशु के केवल छू दो, बस हो गई हिंसा, हो गई अहिंसक बनाने के लिए, नहीं यज्ञ कर रहे हैं हम तो बकरा काटेंगे, हम तो ये काटेंगे, ये पशु काटेंगे, कहते क्यों पाप मूल लेते हो भाई। राजा ने पूछा, अब अंतिम प्रश्न है कि भगवान किस जन्म में, किस युग में कैसा रंग धारण करते हैं? तो कहने लगे, देखो सतयुग के अंदर भगवान एकदम गौर वर्ण के रहते हैं, और सतयुग के अंदर भगवान यूं दंड कमंडल लिए हुए रहते हैं, साधु सन्यासी के रूप में रहते हैं, और उस समय के मनुष्य बड़े शांत होते हैं, और भगवान का नाम हंस, सुपर्ण ये रहता है। त्रेतायुग में आते हुए भगवान के बाल हैं थोड़े थोड़े लाल लाल होने लगते हैं, और यज्ञ की सामग्री को लेने के कारण से भगवान को यज्ञ नाम से कहा जाता है। द्वापर में आते आते भगवान थोड़े श्याम वर्ण के होते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, और अपने शंख चक्र गदा आदि धारण किए हुए होते हैं, श्रीवत्स का चिन्ह होता है। उस समय में भगवान को वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ऐसे इन नाम से बोला करते हैं। कलयुग में आने पर भगवान त्रिशा कृष्ण वर्ण वाले होते हैं, मणि के समान होते ना वो त्रिशा कृष्ण, अथवा बरसात के समय में बरसने वाले मेघ के समान काले होते हैं, अथवा वो होते हैं, देखो बरसने वाले मेघ के समान कब होते हैं, जब किसी भक्त को दर्शन देते हैं तब, और सामान्यतया भगवान का रंग बरसात के समय में आसमान में कोई बादल नहीं रहता और प्रचंड गर्मी रहती है, उस समय आप देखो आसमान एकदम साफ रहता है, थोड़ा नीला 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 चमकने वाला होता है, ऐसे भगवान का वो रंग होता है, और भक्त के सामने आते हैं तो बरसने वाले बादल के समान घनश्याम होते हैं। उस समय में भगवान की पूजा होती है कि वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, कृष्ण रूप से और राम रूप से उनकी उपासना होती है। देखो इस कलयुग के अंदर आने के लिए देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े पुरुष प्रार्थना करते हैं भगवान से कि महाराज हमको आप मनुष्य बना करके भेजो, तो कलयुग में भेजना ताकि वहां पर भगवान का नाम लेने से, आपका नाम लेने से तत्काल हमारा कल्याण हो जाए। देखो राजन, देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी चराजन। जो व्यक्ति भगवान के शरण हो जाता है उसके ऊपर देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है, भूत ऋण है, कोई ऋण बाकी नहीं रहता जो भगवान की शरण में चला जाता है। और एक बात और कहते हैं, भगवान की शरण स्वीकार कर ली और बिना चाहे अनचाहे कोई बात ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि कोई पाप घटित हो गया तो भगवान अपने आप ही उसको क्षमा कर देते हैं, जानबूझ करके न किया जाए। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसी ऐसी वहां पर लीलाएं हुई थी, बात हुई थी और फिर वे ऋषि मुनि अपने स्थान पर चले गए। तो आप भी देखो, देखो वसुदेव जी महाराज, इन दोनों को अपना बेटा ही मत मानो, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है और अपने ऐश्वर्य को छिपा करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आए थे, अब ये अपना पूर्ण विस्तार यश का विस्तार कर चुके हैं। ऐसे भगवान के आप नित्य प्रति दर्शन करते हो, आपका बड़ा सौभाग्य है। इतना कहकर के नारद जी महाराज वहां से चले गए और वसुदेव देवकी ये अपना सारा मोह छोड़ करके भगवान के प्रेम रस में डूबे रहे। इस कथा को, इस इतिहास को, इस प्रसंग जो को सुनता है उसके हृदय में छिपे से छिपा हुआ कोई मैल होता है, वो मैल उसका दूर हो जाता है और वो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। अब कल वही कथा की समाप्ति का दिन है, कल यहाँ भागवत की पूर्णार्ति होगी और सुयोग है कि कल रविवार का भी दिन है और पूरी भागवत का इसमें सारांश भी कहा जाएगा और बहुत ज्ञान की बातें भी कही जाएगी। देखो इतने दिन तक तो आप आए और कल के दिन नहीं आएंगे तो बहुत बड़ा भारी कमी रह जाएगी आप में, एक सुनने में एक कमी रह जाएगी। और यदि किसी कारण से इतने दिन नहीं आए और कल आ गए तो इसमें कल की कथा में पूरी भागवत का सारांश हो जाने से पूरी भागवत सुनने का एक अलग से महत्व मिलेगा। इसलिए कल की कथा को आप किसी प्रकार न छोड़े और बड़े आनंद से, उत्साह से भगवत भाव लेते हुए आवे और भगवान के रूप में इस कथा को स्वीकार करते हुए आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की
जय,
गोपाल कृष्ण भगवान की
जय,
रास रासेश्वर भगवान की
जय,
श्री वेदव्यास जी महाराज
की जय।
श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय।
आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प बल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान थान की कलिमल मथनि प्रताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी तुम औषधि हरि चरित गानगी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकास भगवत स्वरहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसि कर दया रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की
सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रुणमात्रेण हर्षितं समाश्रयेत् ॐ शांगाय स परिवाराय सायुधाय स शक्तिगाय श्रीकृष्णाय नमः। यदा लब्धोपचार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि तुलसीवर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय।